जैसे ही आरवी ने दिनकर जी से कहा कि क्या आप मुझे पूरी तरह से निजात दिला सकते हैं, तो दिनकर जी बिन कुछ कहे अपनी नज़रें झुका लेते हैं। तब आरवी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया है, आप जा सकते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी भी तरह की कोई हेल्प, ये भी ले जाइए, राधे के हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर इशारा करते हुए। तभी राधे ने आरवी से कहा, आप ऐसा मत कहिए, अयांश बाबा के खिलाफ जाकर उनके दादाजी ने, मेरा मतलब मालिक ने, आपके लिए ये सब मंगवाया है, आप दवा लगा लीजिए, अयांश बाबा कुछ नहीं कहेंगे, आपके घाव भर जाएंगे, दर्द भी कम होगा। आरवी ने नम आंखों से दिनकर जी की ओर देखकर कहा, खत्म तो नहीं होगा ना राधे? पर तभी दिनकर जी अपना हाथ आगे कर राधे को चुप रहने को कहते हैं और आरवी से बोलते हैं, जो मदद कर सकता हूँ वो तो करने दो, वो तो जिद्दी है, तुम भी जिद में खुद को तकलीफ दे रही हो, वो नहीं समझ रहा है अच्छा बुरा, पर बेटा तुम तो समझो। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, अच्छा बुरा बता रहे हैं, तो आप तो दादाजी हैं ना उनके, बड़े हैं, तो आप उनसे क्यों कुछ नहीं कहते? वो मनमानी कर सकते हैं, पर आप उन्हें क्यों कुछ कह नहीं सकते? माफ़ करना, अगर आपने उनकी अच्छे से परवरिश की होती, अच्छे संस्कार दिए होते, तो आज वो ये ज्यादती ना करते और ना आपको यूं अपने पोते के खिलाफ जाकर मदद करनी पड़ती, क्योंकि फिर वो ऐसा कुछ करते ही नहीं। क्या फ़ायदा आपका बड़े और उनका दादा ही होने का, जब आप उन्हें रोक टोक ही नहीं सकते गलत करने पर? शुरू से ही आपने बड़े होने का फ़र्ज़ निभाया होता तो आज आपको भी ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी आँखों के सामने आपका पोता एक लड़की के साथ कितना बुरा कर रहा है, अच्छा तो आपको भी नहीं लगा होगा? लगता तो मुझ पर तरस ना आ रहा होता आपको, और ये सब लेकर आप यहाँ ना होते। दवाइयों की ओर हाथ करते हुए, और कैसे पोते हैं वो, उनके किए पर आपकी जबान बंद और नजरें झुक जाएं। दिनकर जी कुछ बोलते तभी पीछे से अयांश ने जोर से आवाज़ दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादू से इस तरह बात करने की? सबने अयांश की ओर देखा और गुस्से से आरवी की ओर आते हुए अंगली दिखाते हुए बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें मेरे दादू को थोड़ा रहम क्या आ गया, तुम तो ज्ञान ही देने लगी। आरवी, जो कहा सही कहा है अयांश मेहरा, आपके खिलाफ जाकर ये मेरे लिए दवा ला सकते हैं, तो आपके खिलाफ जाकर मुझे यहाँ से जाने देने की हिम्मत क्यों नहीं है इनमें? सच में बड़े हैं आपके, तो बड़े तो छोटों को समझाते हैं, इन्होंने तो चुप्पी साथ रखी है, या आपके जैसे इन्हें भी तमाशा करना देखना पसंद है? और हाँ, आपको इतनी ही अपने दादू की इज्जत प्यारी और उनसे प्यार है, तो अपने गलत कारनामों से क्यों उनका सिर झुका रहे हैं? देखिए, मैं तो इनकी कोई नहीं लगती, फिर भी इनकी आँखें नम हैं मुझे तकलीफ में देखकर, पर जिसने तकलीफ दी उसे कुछ न कह सकते, क्या मजबूरी है इसके पीछे? और आप तो इनके अपने हैं जो गलत कर रहे हैं, सोचा है इनके मन पर क्या बीत रही होगी? या आपको सब पर अपना रौब दिखाने की आदत है, ये भी सबके जैसे डरते हैं आपसे? परायों का क्या सोचेगा अयांश मेहरा, अपनों का भी जो नहीं सोचता। ये सब सुनकर अयांश गुस्से से आरवी की तरफ कदम बढ़ाता है, तभी दिनकर जी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर दे मारी। अयांश अपनी नज़र आरवी से हटाकर उनकी ओर देखता है, तब बोले, सही कह रही हो तुम, इसकी जिद और अपने पोते के मुंह में विवश हूँ, जो हो रहा है वजह भी नहीं जानता हूँ, ये करता है जो भी, उस पर कभी मैं सवाल नहीं करता, मुझे नहीं पता था मेरा अंशु ऐसा भी करेगा, गुस्से से वाकिफ हूँ इसके, पर ऐसा भी कर जाएगा नहीं सोचा था, और आज जो किया है उसका तो ये जवाब भी नहीं देगा, इसे आज गलत नहीं कह रहा तो सही भी नहीं कह रहा हूँ मैं, सोचा अपने पोते के दिए जख्मों पर दवा लगाकर कुछ तो अच्छा कर दूँ तुम्हारे साथ, ये तो पता नहीं क्यों और क्या सोचकर कर रहा है ये सब, पर इतना जान गया हूँ ये अगर जिद्दी है तो तुम भी महाजिद्दी हो। इतना कह दिनकर जी ने अयांश की ओर देखा और उसी वक्त वहां से चले गए। आरवी उन्हें जाते हुए देख रही थी, तभी राधे हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर इशारा करते हुए बोला, ये। तभी अयांश ने ट्रे पर जोर से हाथ मारा और वो राधे के हाथ से नीचे जा गिरी। कोई जरूरत नहीं है इस पर रहम दिखाने की, कोई दवा लगाने की, ना दादू को और ना ही तुम्हें, जाओ यहां से, फिर ये सब करते हुए इसके पास नजर भी आया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, अयांश राधे पर चिल्लाया तो राधे उसी वक्त वहां से भाग गया। आरवी, सही है, जैसा सोचा था आप वैसे ही हैं, निर्दयी मिस्टर मेहरा। तभी अयांश ने आरवी की बाहें पकड़ी और गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है मेरे दादू को ये सब कहोगी और उनका सहारा लेकर यहाँ से चली जाओगी, या उनके कहने पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? नेवर आरवी, ऐसा सोचकर तुम खुद को बेवकूफ बना रही हो। हाँ, मेरे दादू मेरे लिए सब कुछ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें रोकता भी नहीं, अभी वो तुम्हारे लिए दवा लेकर आए और आगे भी लेकर आ सकते हैं, इसका ये मतलब मत निकालना मैं उनकी सुनूंगा, तुम्हारे मामले में तो वैसे ही मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, मेरे दादू मेरी दुनिया है, आज के बाद इस तरीके से तुमने उनसे बात की या कुछ कहा तो ये तुम्हारा डेविल हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम्हें अंदाजा नहीं, अभी बातों से काम ले रहा हूँ, आगे क्या करूँ मैं भी नहीं जानता, दवा की नहीं दर्द की आदत डाल लो तुम, मेरे दादू से मैं खुद ऐसे बात नहीं करता, तो तुम कौन हो, तुम पर पूरा हक मेरा है और जो होगा मैं चाहूंगा वही, सो आगे से अपने लेक्चर अपने पास रखना और मेरे दादू के सामने एक हाथ जितनी जुबान बंद, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक ही सांस में बोलते हुए आरवी ने अयांश की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, दिख रहा है आपका व्यवहार आपके दादू के साथ, प्यार है, दुनिया है, ये है वो है, इनफ मिस्टर मेहरा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और तभी अयांश ने आरवी को पीछे की तरफ झटक दिया और उसी वक्त वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। आरवी अयांश को जाते देख कहती है,
कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान, समझ से बाहर है, चाहता क्या है करता क्या है कुछ समझ नहीं आता है। इतना प्यार है, दुनिया है दादाजी, तो उन्हें ये सब करके कौन सी खुशी दे रहा है। और वो दादाजी, इतना भी क्या मोह, जो गलत है जानकर भी थप्पड़ लगाना तो दूर, कुछ कह भी ना सकते। सब डरते हैं इस डेविल कुमार से। अयांश की गाड़ी बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रुकी। अयांश गाड़ी से उतरा और बिल्डिंग की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर आ रहा था, सब उसे हेलो सर कहते हुए हाँ में सिर हिला रहे थे। पर अयांश सीधा आगे बढ़े जा रहा था, बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी को रिस्पॉन्स दिए। जैसे ही अयांश लिफ्ट की ओर बढ़ा, तभी प्योन भागा उसके पास आया और लिफ्ट का बटन दबाकर उसे खोल दिया। अयांश लिफ्ट में गया और लिफ्ट बंद करते हुए प्योन से बोला, वन कॉफी। प्योन, यस सर। और अयांश लिफ्ट से ऊपर सेकंड फ्लोर पर अपने केबिन में चला गया। अयांश ने केबिन में जाते ही अपना कोट उतारा और चेयर पर डालकर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी प्योन उसके लिए कॉफी लेकर आ गया। अंदर आते ही प्योन ने कॉफी टेबल पर रखी। सर, कॉफी। अयांश खिड़की से उसकी ओर आया और टेबल से कॉफी मग उठाकर प्योन से बोला, सुनो, विनीत को अभी भेजो। ये सुनकर प्योन अयांश की ओर देखकर नजरें झुका लेता है। अयांश कॉफी मग टेबल पर छोड़ा और कहा, व्हाट हैपेंड? प्योन, दबी सी आवाज में, वो सर, अभी विनीत सर आए नहीं है। अयांश ये सुनते ही गुस्से से बोला, अभी तक नहीं आया है? कॉल करो, जाकर उसे बोलो 10 मिनट में ऑफिस पहुंचे, अदरवाइज अपनी छुट्टी समझे। प्योन,
सर वो,
अयांश, गेट आउट। और प्योन उसी वक्त केबिन से चला गया। पता नहीं सबने खुद को समझ क्या रखा है, ऑफिस है घर नहीं, टाइम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है।
कहते हुए अयांश ने वापस कॉफी मग उठाया और जाकर खिड़की के पास खड़ा होकर कॉफी पीने लगा। तभी फिर डोर नॉक हुआ। मैं आई, आई एम कमिंग सर। अयांश बिना डोर की ओर देखे,
बड़ी जल्दी आ गए तुम, बचा ही ली तुमने आखिरकार अपनी जॉब।
अयांश की ही उम्र का शख्स जिसका नाम विनीत है, वो टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला,
सॉरी सर, और जॉब बचाने की ना बचाने की बात तो आपके हाथ में है। आप चाहें तो मुझे धक्के देकर अपने ऑफिस से निकाल सकते हैं विदाउट रिजाइन लेटर।
अयांश उसकी ओर मुड़ते हुए, ये घर है या ऑफिस? विनीत अयांश की ओर देखते हुए फट से बोला,
ऑफिस।
अयांश उसकी ओर आते हुए, तो घर समझने की भूल क्यों?
विनीत, भूल हुई है सर, गलती नहीं,
और भूल की तो माफी मिल सकती है ना? अयांश टेबल पर कॉफी मग छोड़ते हुए,
वजह जान सकता हूँ लेट आने की?
विनीत, जो सर आपने किया है उसकी वजह आप बताएं तो मैं भी बता सकता हूँ। ये सुनते ही अयांश गुस्से से अपना एक कदम विनीत की ओर बढ़ाता है। तभी विनीत टेबल से कॉफी मग उठाते हुए बोला,
बॉस गिरी बाद में झाड़ना, पहले कॉफी पीने दे यार, कल से कुछ ठीक से खाया पिया नहीं है, सुबह से एक घूंट पानी भी नहीं पिया है।
अयांश ने उसकी ओर गुस्से से देखा तो विनीत कॉफी का घूंट भरते हुए, पहले ये पी लूं। ये सुनकर अयांश ने ना में सिर हिलाया और उसी वक्त अपने केबिन से चला गया। उसके जाते ही विनीत ने लंबी सी सांस ली और मुंह से भूखते हुए बोला,
बच गई जॉब भी और मेरी जान भी। जंगल में शेर के पास पास रहना बिल्कुल खतरों से खाली नहीं है। थूक निकलते हुए, क्रमशः।